नमस्कार भारत, तारीख 12 अप्रैल दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। केरल के मंदिर में लगी आग की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, पर एक साथ इतनी मौतों का ज्योतिष के पास क्या है जवाब?
तो इसका व्यक्ति की कुंडली से मतलब नहीं है, इसलिए इसको ज्योतिष साथ भूखंड का विचार करता है, वो देश का विचार करता है और व्यक्ति इसके साथ इंक्लूड नहीं होता है।
भारत ने पाकिस्तान सीमा पर 5 स्तरीय निगरानी व्यवस्था को मंजूरी दी।
मेरा अंदाजा इस वक्त यह है कि गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर में इनको इंस्टॉल करने के बाद एक आइडिया होगा कि कितना समय लगेगा और कितना खर्चा होगा।
कार्यक्रम में होंगी खेल की खबरें, साथ ही अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। केरल के कोल्लम स्थित पुत्तिंगल मंदिर में आतिशबाजी के कारण लगी आग के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, कोल्लम के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से 4 सप्ताह के अंदर इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। आग लगने की वजह से 108 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 400 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। असम विधानसभा के लिए कल हुए दूसरे दौर के मतदान में 85% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। असम में दूसरे दौर में 61 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान के वक्त संवाददाता सम्मेलन करने को लेकर असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। असम में पहले चरण में 4 अप्रैल को 65 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण के दूसरे हिस्से में 31 सीटों पर मतदान हुआ। यहां कुल 79.56% लोगों ने वोट डाले। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को बड़ा झटका लगा है। ब्राजील कांग्रेस की एक कमेटी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया है। 65 सदस्यीय कमेटी के 38 सदस्यों ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाने के समर्थन में वोट दिया, जबकि 27 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट डाला। राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने बढ़ते घाटे को छुपाने के लिए सरकार के खातों में हेराफेरी की। राष्ट्रपति ने इन आरोपों से इनकार किया है। हालांकि कांग्रेस कमेटी के फैसले का महत्व सांकेतिक ही है। अब निगाहें निचले सदन पर हैं, जहां इस मामले पर 17 या फिर 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। इस मामले में करीब 10 घंटे तक चली बहस के दौरान कमेटी के प्रेसिडेंट रोजेरियो रोसो ने कहा, ये दीवारें खड़ी करने का वक्त नहीं, इस प्रक्रिया के पूरे होने तक हमें तकरार को किनारे कर देना चाहिए। इसका चाहे जो भी नतीजा हो, लेकिन हमें देश के साथ मौजूदा समस्या से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए। ये थे रूसो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश में जीका वायरस का खतरा पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं ज़्यादा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के एक अधिकारी का कहना है कि जीका के असर और फैलाव को लेकर जो जानकारी मिली है, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा डराने वाली है। जीका संक्रमण का पहला मामला करीब 1 साल पहले ब्राज़ील में सामने आया था। इस वायरस को नवजात बच्चों में विकार के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ऐसे उपायों का ऐलान किया है जिससे भ्रष्टाचार से हुई आमदनी को विदेशों में छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी आपने समाचारों में वात्सल्य राय से सुना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल के मंदिर में आतिशबाजी के चलते आग की घटना पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव, कोल्लम के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने मुख्य सचिव से कहा कि ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दे। इस बीच कोल्लम की जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि मंदिर में आतिशबाजी त्रासदी पुलिस की लापरवाही के चलते हुई है। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य इस समय वहीं पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में सीधे उनको शामिल करते हैं। दिव्या, सबसे पहले यही बताइए कि हादसे के 1 दिन बाद स्थिति क्या है?
मोहनलाल जी, 1 दिन बाद यहाँ पर अब बहुत मातम का माहौल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शव जो जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी, अब उनको भी लोग धीरे धीरे पहचान करके घर लेके आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों का दाह संस्कार हो रहा है। कल मैं भी ऐसे कुछ घरों में गई थी, लेकिन अभी भी करीबन 12 से 15 लोगों की शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो वो भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 400 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं, कुछ इनमें कुछ की स्थिति इसमें भी नाजुक बताई जा रही है, और 108 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अभी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और जांच अपनी बहुत ही धीमी गति से चल रही है।
जांच कहाँ तक पहुंची है?
देखिए, जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आ रही है अभी अपुष्ट सूत्रों से, उसमें बताया जा रहा है कि जो मंदिर के अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, उसमें सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट समेत कुछ 5 लोगों ने देर रात सरेंडर किया है कोल्लम क्राइम ब्रांच को, लेकिन अभी इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जांच आगे नहीं बढ़ पाई है, जांच के लिए समय भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। कोल्लम क्राइम ब्रांच तो जाँच कर ही रही है, साथ ही एक 6 माह की अवधि की न्यायिक जाँच जो केरल सरकार ने बनाई है वो भी अपना काम कर रही है, पर जाँच अभी काफ़ी धीमी गति से चल रही है।
ऐसी खबरें कि केरल हाईकोर्ट के एक जज ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है और आतिशबाजी के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, और शायद आज ही हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है।
बिल्कुल सही मोहनलाल जी, ये जस्टिस वी चिदंबरेश हैं जिन्होंने अपनी एक सुमोटो अर्जी दी है और कहा है कि उन्हें लगता है कि ये वक्त सही है कि इस तरह की, उन्होंने मैन मेड ट्रेजेडीज का है, यानी कि इंसानों की तरफ से बनाई गई त्रासदियाँ खत्म की जाए, रोकी जाए। इस तरह के पटाखों को जो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं, ऐसे पटाखों पर रोक लगाकर, बैन लगाकर, तो इसकी एक खास सुनवाई आज एक स्पेशल बेंच, देवासोम बेंच जो केरल हाईकोर्ट की है, आज दोपहर इस पर सुनवाई करेगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आर्टिकल 25 भारत के संविधान का है, जो अपना धर्म आपको अपनाने का और उसको चलाने का आपको छूट देता है, उसमें डेंजरस क्रैकर्स को छोड़ने की आज़ादी उसमें शामिल नहीं की जा सकती धर्म के नाम पे। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि इस वक्त यहाँ पर इलेक्शंस का माहौल है और यहाँ पर ये इतना पुरानी रीत है मंदिरों में, केरल के करीब 1000 मंदिरों में पटाखे छुड़ाने की, कि इस पर लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी हैं और अभी भी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी और इतनी मृत्यु के बाद भी क्या लोग इसके खिलाफ चाहेंगे कि एक पाबंदी लगा दी जाए। और यही चलते चलते ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो थ्रिसूर में इससे भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हाथियों का त्योहार कहा जाता है उसको, थ्रिसूर पूरम, वो शुरू हो गया है और उस एक हफ्ते के इस त्योहार के आखिरी दिन ठीक इसी तरीके का पटाखों की और आतिशबाजी की एक प्रतियोगिता होती है, जिसको इस वक्त मंजूरी दे दी गई है ये कहते हुए कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आर्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब आपको इससे पहले कि अगली रिपोर्ट सुनाए, शनिवार की रात जब पटाखे छूटे तो क्या हुआ था वो आवाजें सुनवाते हैं। शनिवार की रात केरल के एक मंदिर में इन पटाखों के शोर में खुशी से चहकते लोगों की आवाजें कब दर्द भरी चीत्कार में बदल गई, मौके पर मौजूद लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन जब पटाखों का शोर थमा तो 100 से ज्यादा जिंदगियां राख हो चुकी थी और घायल जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे थे। हादसों के बाद अक्सर ये सवाल उठता है कि जिन लोगों की जाने गई वो कौन लोग थे और क्यों उन्हीं की जाने गई। जीवन और मृत्यु से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लोग ज्योतिष में भी खोजते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिन लोगों की कुंडली में मौत लिखी थी वही हादसे का शिकार बने? और कोल्लम हादसा भी अपवाद नहीं है। हमारे सहयोगी प्रभात पांडे ने ज्योतिषियों से बात करके इसे समझना चाहा। प्रभात पांडे की रिपोर्ट सुनिए अजय शर्मा से।
कहते हैं कि मृत्यु का समय निश्चित होता है। ज्योतिष का बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और इंसान के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जीवन चलता है और मौत होती है। तो सवाल ये उठता है कि केरल में कोल्लम मंदिर में एक साथ इतने लोगों की मृत्यु एक ही वक्त एक ही दिन कैसे हो गई? क्या उन सब की कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक जैसी थी या सबके हाथ की रेखाएं एक जैसी थीं? दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में ज्योतिष के प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी।
डिजास्टर में कुंडलियों के हिसाब से नहीं देखा जाएगा कि इसका ग्रह अच्छा था, इसका खराब था, इसकी डेथ हो गई, ये मर गया, ये बच गया, ये नहीं, डिजास्टर तो सबको इकट्ठा लेकर के चलेगा और वहां पर स्थान का विचार किया जाता है, तो इसका व्यक्ति की कुंडली से मतलब नहीं है। इसलिए इसको ज्योतिष साथ भूखंड का विचार करता है, वो देश का विचार करता है और व्यक्ति इसके साथ इंक्लूड नहीं होता है।
तो जब व्यक्ति की किस्मत का फैसला स्थान से ही जुड़ा है तो फिर जन्म कुंडली का क्या मतलब है? देवी प्रसाद त्रिपाठी के पास इसका भी जवाब मौजूद है।
ज्योतिष जब भी विचार करता है तो स्वाभाविक मृत्यु का विचार करता है और इस प्रकार की मृत्यु के लिए उसकी कुंडली में योग होते हैं आपदाओं के कारण, दुर्घटनाओं के कारण, परंतु उससे वो बच भी सकता है मर भी, परंतु जिस मृत्यु की आप बात कर रहे हैं वो उसकी स्वाभाविक मृत्यु की बात आती है, न कि थ्रू डिजास्टर अगर वो किसी घटना में घटित हो गया और चला गया तो उसकी मृत्यु होगी, वो ज्योतिष का पक्ष वहां पर नहीं आता।
एक भविष्यफल वो भी है जो दिन रात टीवी पर आने वाले ज्योतिषी बताते रहते हैं या फिर अखबारों में छपते हैं, ये भविष्यफल कितने सटीक हो सकते हैं?
सब लोगों ने तो उसको मजाक बना रखा हुआ है, ऐसा विचार नहीं किया जाता कि बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता है। यहाँ पर देश शास्त्र नहीं है, यहाँ पर देश सिर्फ इकोनॉमी हो गया। इतनी हल्के में इतने इजी गोइंग विचार करने का उसका कहीं भी उद्देश्य नहीं है और वो किसी की भविष्यवाणी नहीं करता है, वो किसी भी चीज का ही पूर्वानुमान करता है। पूर्वानुमान 100% सही होगा ऐसा नहीं होता।
हालांकि टीवी पर अक्सर देखने वाली एस्ट्रोलॉजर दीपिका कहती हैं कि कोल्लम के हादसे को भी ज्योतिष के नजरिए से समझा जा सकता है।
भौगोलिक तौर पे जो घटना हुई है तो सबके किस्मत में उनकी आयु उतना ही था, सबका अग्निकारक ग्रह के वजह से उनकी ऐसा होना था, तो इसीलिए वो बड़ा ब्रह्मांड के साथ, यानी ऐसा एक जैसे भूकंप में भी देख लीजिए या एक प्लेन क्रैश में देख लीजिए या कोई अग्निकारक घटना में, तो ऐसे घटनाएं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में पूरा घटनाओं के बारे में बताया कि एक इफेक्ट पे कितनी जानवरों की मृत्यु होती है, कितनी मनुष्यों की मृत्यु होती है, पूरी मैथिनी ज्योतिष जिसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है इसमें बताई हुई है।
ये तो हुई ज्योतिषियों की बात, लेकिन जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते उनके पास इन हादसों का सीधा सा जवाब है। जाने माने लेखक और इतिहास पर शोध करने वाले संजय सोनावणी।
जो दुर्घटना घटी है ये आदमी की गलती है, मानवीय कारणों से होती है, कोई दैवी संविधान नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र पहली बात है कि गलत है। 12 राशियों में या 27 नक्षत्रों में दुनिया की 6-7 अरब आबादी हम बात नहीं सकते।
संजय सोनावणि की बात ज्योतिषियों को समझ में आएगी या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन हादसे की वजह ढूंढने वालों को इसे समझने में शायद ज्यादा मुश्किल न हो।
ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणियां। इस बीच केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल मंदिर ट्रस्ट से पूछा है कि आप हमें बताएं कि इस बात को संवैधानिक तौर पर कैसे स्वीकार करें कि मंदिर में महिलाओं को क्यों न प्रवेश करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या कोई ऐसी परंपरा संवैधानिक अधिकारों से ऊपर है? ऐसा क्या आधार है कि किसी महिला को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा सके? इस बीच महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद ने विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शनि मंदिर में महिलाओं के जाने से महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले बढ़ेंगे। उन्होंने कहा,
महिलाओं ने जो शनि का भी दर्शन किया और बड़ी विजय मना रही है, डंका पीट रही है, शनि की दृष्टि महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही है और बढ़ेगी।
तो शंकराचार्य स्वरूपानंद के इस बयान पर विवाद हो गया है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। भारत ने पाकिस्तान से लगती अपनी सीमा पर 5-स्तरीय निगरानी व्यवस्था बहाल करने को मंजूरी दी है। इसे 5 ताले यानी कि 5 लॉक सिस्टम कहा जा रहा है। इस अत्याधुनिक व्यवस्था पर अंदाजा है कि करीब 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से धन खर्च होगा, साथ ही काफी वक्त भी लगेगा। ये व्यवस्था कैसे काम करेगी और इससे कितना फायदा होगा, इस बारे में जानने के लिए निखिल रंजन ने बात की रक्षा मामलों के जानकार कमोडोर उदय भास्कर से।
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए 24/7 जिसको राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस कहते हैं, इसकी एक प्रकार का ढांचा बन रहा है जिसमें अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होंगे। उदाहरण, CCTV कैमरा होंगे, थर्मल इमेजरी होता है, तीसरा है नाइट विजन जो डिवाइसेस होते हैं उनके इस्तेमाल, और एक खास तकनीकी सर्वेलेंस रेडार जो नॉर्मली ऑपरेशनल दृष्टिकोण से इस्तेमाल होता है निगरानी के लिए, एक रेडार का प्रयोग होता है जिसको सर्वेलेंस रेडार कहते हैं, और साथ साथ अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग का भी सेंसर्स का इस्तेमाल होगा, और अंत में एक प्रकार का लेजर का भी बैरियर बन सकता है जहां पे उस प्रकार का टोपोग्राफी है जहां पे बाकी आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और इससे ये उद्देश्य है कि ये फुल प्रूफ होगा, 5 लेयर का इस्तेमाल होगा। और मान लीजिए अगर कोई एक टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब करने की कोई कोशिश होती है तो दूसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार का भी इन्फिल्ट्रेशन रोक पाएंगे।
क्या आपको लगता है कि इस तरह की सुविधाएं बॉर्डर पर देने के बाद पूरी तरह से घुसपैठ को रोक पाना संभव होगा?
भारत पाकिस्तान के बीच में करीब 3,000 किलोमीटर लंबी दूरी की हम बात कर रहे हैं, और इसका जो टोपोग्राफी या जो फीचर्स हैं ये समुद्री तट जहाँ गुजरात में है, बार बार हम सर क्रीक और राना कच्छ की बात करते हैं, उसका जो इलाका है वहाँ से लेके गुजरात राजस्थान और आगे बढ़ते हुए पंजाब जम्मू कश्मीर जो कि पहाड़ी इलाका हो जाता है, तरह तरह का इसमें एक चैलेंजेस है केवल टोपोग्राफी का। और इसमें कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी संख्या बड़ा है, कई ऐसे जगह जो बिल्कुल खाली है, तो इसलिए ये एक चुनौती है।
इसमें कितना वक्त लग जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया जैसा कि आपने खुद ही बताया, खर्चीला भी प्रोजेक्ट है ये,
काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट होगा, और इलाके के ऊपर अलग अलग मेरे ख्याल से पर किलोमीटर की आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहां टोपोग्राफी या जो भूगोल या इलाका साफ है तब इस प्रकार के तकनीकी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, चाहे वो CCTV कैमरा हो, थर्मल इमेजिंग हो, सर्वेलेंस रेडार हो, या अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग और लेजर बीम, क्योंकि ये सब काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं। तो मेरा अंदाज़ा इस वक्त यह है कि पहले ये जो पायलट स्ट्रेचेस हैं गुजरात पंजाब जम्मू कश्मीर में, इनको इंस्टॉल करने के बाद एक आइडिया होगा कि कितना समय लगेगा और कितना खर्चा होगा,
ये कितना कारगर होगा।
किसी भी टेररिज्म या इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट है, ये एक प्रकार का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और अगर कोई ऐसा बहुत ही डिटरमिंड ग्रुप होगा, और इस वक्त हम उस प्रकार के गुटों की बात कर रहे हैं जिन्हें सीमा पार समर्थन मिल रहा है, तब ये चुनौती काफ़ी जटिल होगा। अगर हम केवल इंडिपेंडेंट गुट की बात कर रहे हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो, और उन्हें किसी प्रकार का दूसरे राष्ट्र या स्टेट स्पॉन्सरशिप अगर नहीं मिल रहा है, तब मेरे ख्याल से ये 5 लेयर प्रोटेक्शन काफी सफल होगा।
कोमोडोर उदय भास्कर विश्लेषण कर रहे थे 5 स्तरीय निगरानी व्यवस्था की।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
और अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलट लेते हैं, वात्सल्य राय मौजूद हैं। वात्सल्य, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी मोहनलाल जी, सारे अखबार जहां तक मैं देख रहा हूं पहले पन्ने पे केरल हादसे की खबर तो है ही, इसके अलावा आपको जैसा पता ही है कि सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एक ही परीक्षा का रास्ता खुल गया है,
PMT।
जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का जो अपना पुराना फैसला था उसको बदल दिया है। इसे दिल्ली से प्रकाशित होने वाले ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने इसे लीड खबर बनाया है और हेडिंग दी है मेडिकल के लिए फिर होगा कॉमन टेस्ट। अमर उजाला ने भी इसी खबर को लीड बनाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये लीड खबर है और हेडिंग दिया है SC ब्रिंग्स बैक कॉमन टेस्ट। पायनियर की भी पहली खबर यही है। और जैसा आपको एक और खबर के बारे में जानकारी है कि शनि शिंगणापुर का जो मंदिर है जहाँ बीते हफ्ते 400 साल पुरानी परंपरा टूट गई थी, अब केरल के सबरीमाला मंदिर का नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अयप्पा मंदिर के मामले में सुनवाई की और वहाँ जो परंपरा एक जारी है जहाँ महिलाओं के प्रवेश पर पूजा पर रोक है, तो इस खबर को भी पहले पन्ने पर ज़्यादातर अखबारों ने जगह दी है और दैनिक भास्कर ने इस खबर को बैनर की तरह जगह दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़ा किया है उसे ही अखबार ने अपनी हेडलाइन बनाया है और ये हेडलाइन कहती है कि माँ सर्वोच्च है, जब वो कमरे में आती है तो पहला सम्मान उसी का होता है, फिर उसे मंदिर जाने से कैसे रोक सकते हैं। और इसके साथ ही जो अभी हमने एक बयान सुनाया शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का, तो उस बयान को भी पहले पन्ने पर जगह दी गई है। और यूक्रेन में 2 भारतीय छात्रों की हत्या की जो खबर है इसको भी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के एक बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है, जिसमें जंग के हवाले से बताया गया है कि वो गर्व के साथ भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन दूसरों को ऐसा कहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि दिल्ली के कल राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर एक लूट हुई थी,
12 लाख की लूट।
इसे भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने इसे अपनी लीड खबर बनाया और ग्राफिक्स के जरिए
जनसत्ता जो है अखबार, उसने भी इसी को अपनी खबर बनाया कि मेट्रो परिसर में 12 लाख की लूट।
जी, नवभारत टाइम्स में भी ये लीड खबर है। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों की भी खबर है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन का जो शाही जोड़ा है दिल्ली,
उसकी तस्वीरें छपी हुई
हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया वात्सल्य राय आपका।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कभी बारिश की कमी से तो कभी बाढ़ के चलते फसल अक्सर खराब हो जाती है, जिसके बाद ना तो किसान के पास खाने के लिए अनाज रहता है और ना ही बेचने के लिए, जिससे वो कर्जा भी नहीं उतार पाता। मौसम की मार झेल रहे किसानों को नई फसल बीमा योजना से काफी उम्मीदें हैं, जिससे वर्तमान में चल रही योजना से सस्ता और ज्यादा फायदेमंद बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी समीर हाशमी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसे सुना रहे हैं वैभव श्रीवास्तव।
बीते कुछ साल भारत में किसानों के लिए काफी मुश्किल रहे हैं।
पता नहीं दुष्काल,
कुछ किसानों को कम बारिश की वजह से परेशानी हुई तो देश के कुछ इलाकों में बाढ़ की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा। और आम तौर पर जब हालात खराब होते हैं उस वक्त सहायता कम ही मिलती है। हाल ही में आई सरकार की फसल बीमा योजना के हिसाब से कम पैदावार वाली फसल किसानों के लिए मुसीबत का पैगाम नहीं होगी, परंतु सवाल ये है कि क्या ये योजना काम करेगी। किसान सुधम पागर के लिए ये बसंत ऋतु बहुत मुश्किल रही। जनवरी में हुई भारी बेमौसम बरसात की वजह से उनके खेत में लगी अनार की फसल बर्बाद हो गई। ये लगातार तीसरा साल है जब मौसम की मार से फसल खराब हुई है। पिछली गर्मियों में उनकी प्याज की फसल कम बारिश की वजह से खराब हो गई थी। किसान सुधम पागर कहते हैं,
अब घर
घर में ज्यादा खाना नहीं है, जितना हमें खाना चाहिए हम उसका आधा ही खाते हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है। बैंक वाले और कर्जदार मुझे रुपए लौटाने के लिए बार बार परेशान करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा।
ये थे किसान सुधम पागर के शब्द। महाराष्ट्र में बाकी गांव में भी हालात कुछ अलग नहीं है, खासकर वहां जहां अंगूर उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कई इलाके अंगूर उगाने के लिए जाने जाते हैं, कुछ फल की तरह बेच दिए जाते हैं तो कुछ वाइन बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पर पिछले महीने आई मूसलाधार बारिश ने एक खेत में फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। किसान के पास बीमा ना होने की वजह से उसका पूरा निवेश डूब गया। असंतुलित मौसम किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी है, खासकर उनके लिए जिनके पास आर्थिक सहारा नहीं होता। तो क्या सरकार की नई बीमा योजना ये स्थिति बदल सकती है? नई सरकारी योजना वर्तमान में दी जा रही बीमा से सस्ती है और ज्यादा भुगतान देने का प्रस्ताव दे रही है। लागू होने के बाद ये योजना देश के लगभग आधे किसानों की मदद कर पाएगी, पर किसान इतनी आसानी से इस बात को नहीं मान रहे। नाशिक किसान संघ के अध्यक्ष हंसराज वदघुले का कहना है,
आज की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो चलती आ रही है 100% वो बहुत ही गलत पॉलिसी है। अगर उसका ऑडिट किया जाए, मैं तो बोलूँगी ये इसका पूरा अगर कैलकुलेशन निकाला जाए बाहर 5 साल में 10 साल में कितने लोगों को ये इंश्योरेंस फार्मर्स को मिला और उसके अगेंस्ट कितना पैसा फार्मर लोगों ने भरा है गवर्नमेंट के पास में।
नाशिक किसान संघ के अध्यक्ष हंसराज वदघुले के शब्द। भारत सरकार ने लगभग 5200 करोड़ से ज्यादा रुपए फसल बीमा योजना के लिए अलग रखे हैं। वहीं बैंक और बीमा कंपनियों का कहना है कि इस बार ये योजना कामयाब होगी। HDFC बैंक के ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख असीम ध्रुव कहते हैं,
They have made the scheme very simple in the sense that they have said that every farmer who has a loan from a bank has to avail of this scheme.
नई योजना को इस तरह से आसान बनाया गया है कि जो भी बैंक से कर्ज लेगा उसे इस योजना से जुड़ना ही पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात ये कि बीमा की पूरी जिम्मेदारी एक ही कंपनी को नहीं दी गई है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंपनियां काम करेंगी। तीसरी बात यह है कि किसानों को तकनीक की मदद से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें फसल संबंधी जानकारी लगातार मिल सके।
HDFC बैंक के ग्रामीण बैंकिंग विभाग के प्रमुख असीम ध्रुव के शब्द। नई बीमा योजना बहुत जल्द लागू की जाएगी और इस योजना पर संदेह के बावजूद किसान इसके जरिए अपनी आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं।
और अब कार्यक्रम में उन खबरों की चर्चा जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बाघों के संरक्षण के लिए तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया और म्यांमार समेत कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में बाघ मामलों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और प्रबंधक भी भाग लेंगे। सम्मेलन में मुख्य तौर पर बाघों के संरक्षण और शिकार पर रोक लगाने की रणनीति पर चर्चा होगी। 3 दिन के भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर आज नई दिल्ली में होंगे। वो भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादियों ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के उत्पीड़न और उन पर हमलों के खिलाफ आज कश्मीर बंद का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीरवाइज फारूक गुट ने भी कश्मीर बंद का समर्थन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में आज डांस बार को नियंत्रित करने से जुड़ा बिल पेश हो सकता है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के मसौदे में बार डांसरों का उत्पीड़न रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बार डांसरों को गलत तरीके से छूने और उनके साथ गलत व्यवहार करने पर 6 महीने की सजा और लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने समेत कई प्रावधान हैं। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के शाही जोड़े यानी प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में दोपहर के भोज का आयोजन करेंगे। इसके बाद प्रिंस विलियम अपनी पत्नी केट के साथ असम के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। असम में वो काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे।
और अब खेल की खबरें आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। IPL 9 में कल भी केवल एक मुकाबला खेला गया, जहां इस सीजन की नई टीम गुजरात लायंस ने जीत की दहाड़ लगाते हुए किंग्स 11 पंजाब को उसी के मैदान मोहाली में 5 विकेट से मात दी। जीत के लिए 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात के सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच ने केवल 47 गेंदों पर 12 चौके जमाते हुए 74 रनों की निर्णायक पारी खेली। कप्तान सुरेश रैना ने भी केवल 9 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 20 रन बनाए। बाकी का काम दिनेश कार्तिक ने नाबाद 41 रन बनाकर पूरा किया। गुजरात ने 17.4 ओवर में विजयी लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने मुरली विजय के 42, मनन वोहरा के 38 और मार्क्स स्टोइनिस के 33 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 161 रन बनाए। ड्वेन ब्रावो ने 22 रन देकर 4 और रविंद्र जडेजा ने 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। आज IPL में बेंगलोर में अपने ही मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। बेंगलोर की कमान विराट कोहली के हाथों में है तो दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर क्रिस गेल, सरफराज खान, शेन वाटसन और केन रिचर्डसन टीम को मजबूती देते हैं। गेंदबाजी में सैमुअल बद्री, स्टुअर्ट बिन्नी, शेन वाटसन और मिलने धारदार हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर हैं, जो अगर चल निकले तो शानदार शुरुआत दे सकते हैं। शिखर धवन जाना पहचाना नाम है ही, हेनरी केस और केन विलियमसन भी किसी से कम नहीं है तो गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, अनुभवी आशीष नेहरा, ट्रेंट बोल्ट और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं।
और इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को बड़ा झटका लगा है। ब्राजील कांग्रेस की एक कमेटी ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया है। अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश में जीका वायरस का खतरा पहले लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ऐसे उपायों का ऐलान किया है जिससे भ्रष्टाचार से हुई आमदनी को विदेशी अकाउंट में छुपाना मुश्किल हो जाएगा। फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष अल्फ्रेडो हेविट ने भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान रिश्वत लेने की बात मानी है। उन्होंने अमेरिका की एक कोर्ट में जज के सामने कहा कि टूर्नामेंट और मैचों की मार्केटिंग और ब्रॉडकास्ट अधिकार देने के बदले उन्होंने हजारों डॉलर लिए हैं। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। विश्व भारती लेकर हम फिर से हाजिर होने वाले हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।